यशाया अध्याय 19। अब वो मिस्र से कहता है, यशाया अध्याय 19 पद 1 और 2, मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी, देखो यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है, और मिस्र की मूर्तें उसके आने से थरथरा उठेंगी, और मिस्रियों का हृदय पानी पानी हो जाएगा, और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा। परमेश्वर यहां गृह युद्ध की भविष्यवाणी देता है, यशाया अध्याय 19 पद 2, और वे आपस में लड़ेंगे, प्रत्येक अपने भाई से और हरेक अपने पड़ोसी से लड़ेगा, नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेगा, मिस्र में अराजकता और गृह युद्ध होगा। यशाया अध्याय 19 पद 3, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपनी मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वाले टोहनों के पास जा जाकर उनसे पूछेंगे, परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा और एक क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, और देखिए कि वो बड़ी रोचक भविष्यवाणी देता है, यशाया अध्याय 19 पद 5 और 6, और समुद्र का जल सूख जाएगा और महानदी सूख कर खाली हो जाएगी और नाले बासने लगेंगे। नए संस्करणों में लिखा है, वे बहती नदी में बांध बना देंगे। यशाया अध्याय 19 पद 6 से लेकर 11 तक, और मिस्र की नहरें भी सूख जाएंगी और नरकट और हुगले कुमला जाएंगे। नील नदी के तीर पर के कच्चार की घास और जो कुछ नील नदी के पास बोया जाएगा वो सूख कर नष्ट हो जाएगा और उसका पता तक ना लगेगा। सब मछुए जितने नील नदी में बांसी डालते हैं विलाप करेंगे और लंबी लंबी सांसें लेंगे, और जो जल के ऊपर जाल फेंकते हैं वे निर्बल हो जाएंगे। फिर जो लोग घुने हुए सन से काम करते हैं और जो सूत से बुनते हैं उनकी आशा टूट जाएगी। मिस्र के रईस तो निराश और उसके सब मजदूर उदास हो जाएंगे। निश्चय सोआन के सब हाकिम मूर्ख है और फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु की सी ठहरी। फिर तुम फिरौन से कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन राजाओं की संतान हूं? ये नदी पर बांध बनाने की भविष्यवाणी है और उसकी पूर्ति करता है अस्वान बांध। 1970 से ही इस बांध के कारण कुछ पर्यावरण की समस्या सामने आ रही है। सरकार को दी गई रिपोर्टों में जो सरकारी रिकॉर्ड बन गई है, सबसे पहली रिपोर्ट थी कि लॉस एंजलिस में धुआं और कोहरा बहुत अधिक हो गया है जो पर्यावरण नाशक है। दूसरी समस्या थी डीडीटी, मच्छर या कीड़े मारने की दवाई की, जिसके विरुद्ध कानून बनाया जा चुका है। तीसरे स्थान पर था मिस्र, जिसकी रिपोर्ट में था अस्वान बांध के कारण नील नदी की गति कम हो गई है, 600 मील आगे चलकर नदी में रेत रुकने के कारण भूमध्य सागर का पानी वहां चढ़ रहा है, जिसके कारण 10 लाख एकड़ उपजाऊ भूमि समुद्री जल से मग्न हो गई है। बांध के नीचे घोंघे जानलेवा बीमारी के परजीवी फैला रहे हैं, जिसके कारण हजारों स्त्री पुरुष और बच्चे मौत के मुंह में जाएंगे। अब नील नदी खनिज पदार्थों को समुद्र में नहीं ले जा रही है, उसमें मछलियां भी समाप्त होती जा रही है और मछियारे कैरो और सिकंदरिया के जेजे कॉलोनी में जाकर बस रहे हैं। भोजन का ये स्रोत समाप्त होता जा रहा है। पानी की कमी और हरियाली की कमी के कारण वातावरण में ऑक्सीजन की भी कमी आ रही है। असवान बांध के कारण पर्यावरण के नुकसान होने पर 10 वर्ष पश्चात अध्ययन में सबसे पहली बात जो देखी गई वो यही भविष्यवाणी है कि समुद्री जल के कारण उपजाऊ भूमि का नाश हो जाएगा। इस बांध को बनाने का उद्देश्य था कि सिंचाई के लिए पानी को व्यवस्थित किया जाए कि खेती के लिए हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई हो, परंतु हुआ ये कि सिंचाई परियोजनाओं द्वारा जितनी भूमि को खेती के लिए तैयार किया गया उससे 2 गुना अधिक डेल्टा क्षेत्र की उपजाऊ भूमि समुद्री पानी के आ जाने के कारण नाश हो गई, क्योंकि जो रेत नील नदी बाढ़ में लाकर वहां जमा करती थी वह अब आ नहीं रही थी कि जमा होकर समुद्र के पानी को अंदर आने से रोके। अब क्योंकि नील नदी में बाढ़ ना आने के कारण रेत नहीं आती है कि समुद्र के पानी को रोकने के लिए वो वहां जमी हो, इसका परिणाम ये हुआ कि समुद्री जल अब उस उपजाऊ भूमि पर आ गया और वो भूमि नाश हो गई। यशया ने ये भी कहा था कि नरकट और हुगेल कुमला जाएंगे। अब क्योंकि नील नदी में बाढ़ नहीं आती है तो वे घोंगे जो बाढ़ के द्वारा समुद्र में आ जाते थे वहां उग रही नरकटों और हुगलों की जड़ों को खा गए, जिसके कारण नील नदी सूख रही है। 1970 में मत्स्य व्यवसाय लगभग विलोप होने लगा था, अब पूरा का पूरा समाप्त हो गया है, वहां मत्स्य व्यवसाय रहा ही नहीं। भूमध्य सागर में इतनी मछलियां होती थी कि मिस्र का सबसे बड़ा प्रोटीन स्रोत वहीं से आता था, वहां बहुतायत से अधिक मछलियां थी। इसका कारण था कि नील नदी बाढ़ के पानी में पौष्टिक पदार्थ लाकर समुद्र में गिराती थी। अब कोई नहीं जानता कि मछलियां कहां चली गई या विलोप हो गई। ये एक आश्चर्य की बात है कि 2700 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने यशया को बांध के बनाने का ही नहीं वरन उसके कारण पर्यावरण के विनाश का भी संदेश दिया था। मिस्रियों की राय यह है कि स्थिति को सुधारने के लिए असवान बांध को ढा दिया जाए। यहां रोचक बात तो यह है कि यशया भविष्यवाणी के अंत में हाकिमों और मंत्रियों के लिए भी कुछ कहता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने वो बांध बनाया था। यशाया अध्याय 19 पद 12। अब तेरे बुद्धिमान कहां है? सेनाओं के यहोवा ने मिस्र के विषय जो युक्ति की है उसको यदि वे जानते हो तो तुझे बताएं। मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, अब आप उन्हें बता दो। परमेश्वर ने तो पहले ही बता दिया है कि कैसा विनाश होगा। कोई मनुष्य बताए कि परमेश्वर का क्या प्रयोजन है? यशाया अध्याय 19 पद 13 और 14। सोआन के हाकिम मूड बन गए हैं, नोप के हाकिमों ने धोखा खाया है, और जिन पर मिस्र के गोत्रों के प्रधान लोगों का भरोसा था उन्होंने मिस्र को भरमा दिया है। यहोवा ने उसमें भ्रमता उत्पन्न की है, उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में वमन करते हुए मतवाले की नाई डगमगा दिया है। कैसा सजीव चित्रण! यशाया अध्याय 19 पद 15 से लेकर 17 तक। और मिस्र के लिए कोई ऐसा काम न रहेगा जो सर व पूंछ से अथवा प्रधान वो साधारण से हो सके, उस समय मिस्री स्त्रियों के समान हो जाएंगे और सेनाओं का यहोवा जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा उसके डर के मारे वे थरथराएंगे और कांप उठेंगे। और यहूदा का देश मिस्र के लिए यहां तक भय का कारण होगा कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा वो थरथरा उठेगा। सेनाओं के यहोवा की उस युक्ति का यही फल होगा जो वो मिस्र के विरुद्ध करता है। आज जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो सोचते हैं कि परमेश्वर ने इन सब बातों की कैसे स्पष्ट और संक्षिप्त भविष्यवाणी दी थी। यहूदा राष्ट्र फिर से मिस्र के लिए भय का कारण बन रहा है। यशाया अध्याय 19 पद 18 से लेकर 21 तक। उस समय मिस्र देश में 5 नगर होंगे जिनके लोग कनान की भाषा बोलेंगे और यहोवा की शपथ खाएंगे। उनमें से एक का नाम नाश नगर रखा जाएगा। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए वेदी होगी और उसके सिवाने के पास यहोवा के लिए खंबा खड़ा होगा। वो मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा और जब वे अंधेर करने वाले के कारण यहोवा की दुहाई देंगे तब वो उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा, उन्हें मुक्त करेगा। तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा। उस समय भविष्य में प्रभु के दिन, जिस दिन परमेश्वर काम दिखाएगा, निस्संदेह मसीह यीशु के आने के दिन परमेश्वर संपूर्ण जगत को अपना काम दिखाएगा। मिस्र परमेश्वर की आराधना का केंद्र होगा। आज मिस्र में इस्लाम का राज है। मिस्र में आप किसी को मसीह यीशु का ज्ञान देते हैं तो आपको मृत्यु दंड दिया जाता है। एक मुसलमान को किसी अन्य धर्म में ले जाना मृत्यु दंड का अपराध माना जाता है, परंतु उस समय मसीह यीशु को वे जान लेंगे। यशाया अध्याय 19 पद 21 और 22। और मिस्री उस समय यहोवा को पहचानेंगे और मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे और यहोवा के लिए मन्नत मानकर पूरी भी करेंगे। और यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वो मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे और वो उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। मिस्र को मसीह विरोधी की मार लगेगी क्योंकि वो अपनी सेना लेकर अफ्रीका को जीतने निकलेगा। वो मिस्र से होता हुआ एथियोपिया की सीमा तक जाएगा। उसी समय उसे उत्तर और पूर्व के समाचार प्राप्त होंगे कि चीन पश्चिम की ओर से आ रहा है। वो अपने क्रोध में उत्तर और पूर्व की संयुक्त सेना अर्थात रूस को रोकने आएगा और हर मिगदोन में भयंकर युद्ध होगा। मिस्र अवश्य पिसेगा, परंतु क्रिस्त विरोधी का अफ्रीका जीतने का स्वप्न पूरा नहीं होगा क्योंकि उसे पूर्व और उत्तर से सेना के आने का समाचार प्राप्त होगा। वो हर मिगदोन के युद्ध में व्यस्त हो जाएगा। यशाया अध्याय 19 पद 24। उस समय प्रभु के दिन के बाद जब परमेश्वर उनका पुनरुद्धार करेगा, विशेष करके अशूरों का जो आज का इराक है, और मिस्र के बीच एक राजमार्ग स्थापित किया जाएगा जो इसराइल के बीचों बीच होते हुए जाएगा, और प्रभु के महिमामय समय पर इसराइल मिस्र और इराक इन तीनों देशों के मधुर संबंध होंगे। यशाया अध्याय 19 पद 24 और 25। उस समय इसराइल मिस्र और अशूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को ये कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र और मेरा रचा हुआ अशूर और मेरा निज भाग इसराइल। अतः उस समय वो दिन जब यीशु परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने आएगा।